ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय श्लोक संख्या 12 और 13। ये दोनों श्लोक अद्वैत तत्व के संबंध में हैं, क्योंकि आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है। महाविष्णुः
महाविष्णुः
जगत्कर्ता
जगत्कर्ता
मायया
मायया
यः
यः
सृजति
सृजति
अधः
अधः
तस्य
तस्य
अवतारः
अवतारः
एव
एव
अयम्
अयम्
अद्वैत
अद्वैत
आचार्यः
आचार्यः
ईश्वरः
ईश्वरः।
महाविष्णुर्जगत्कर्ता
महाविष्णुर्जगत्कर्ता
मायया यः सृजत्यदः
मायया यः सृजत्यदः
तस्यावतार एवायम्
तस्यावतार एवायम्
अद्वैताचार्य ईश्वरः
अद्वैताचार्य ईश्वरः।
महाविष्णुर्जगत्कर्ता
महाविष्णुर्जगत्कर्ता
मायया यः सृजत्यदः
मायया यः सृजत्यदः
तस्यावतार एवायम्
तस्यावतार एवायम्
अद्वैताचार्य ईश्वरः
अद्वैताचार्य ईश्वरः।
महाविष्णुर्जगत्कर्ता
महाविष्णुर्जगत्कर्ता
मायया यः सृजत्यदः
मायया यः सृजत्यदः
तस्यावतार एवायम्
तस्यावतार एवायम्
अद्वैताचार्य ईश्वरः
अद्वैताचार्य ईश्वरः।
महाविष्णु
जगत्कर्ताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। अद्वैतम्
अद्वैतम्
हरिणा
हरिणा
अद्वैतात्
अद्वैतात्
आचार्यम्
आचार्यम्
भक्ति
भक्ति
शंसनात्
शंसनात्
भक्त
अवतारम्
अवतारम्
ईश्वरम्
ईश्वरम्
ईशम्
ईशम्
तम्
अद्वैत
अद्वैत
आचार्यम्
आचार्यम्
आश्रये
आश्रये।
अद्वैतम् हरिणाद्वैतात्
अद्वैतम् हरिणाद्वैतात्
आचार्यं भक्तिशंसनात्
आचार्यं भक्तिशंसनात्
भक्तावतारम् ईशंतम्
भक्तावतारम् ईशंतम्
अद्वैताचार्यमाश्रये
अद्वैताचार्यमाश्रये
अद्वैतम् हरिणाद्वैतात्
अद्वैतम् हरिणाद्वैतात्
आचार्यं भक्तिशंसनात्
आचार्यं भक्तिशंसनात्
भक्तावतारमीशं तम्
भक्तावतारमीशं तम्
अद्वैताचार्यमाश्रये
अद्वैताचार्यमाश्रये
अद्वैतम् हरिणाद्वैतात्
अद्वैतम् हरिणाद्वैतात्
आचार्यं भक्तिशंसनात्
आचार्यं भक्तिशंसनात्
भक्तावतारमीशं तम्
भक्तावतारमीशं तम्
अद्वैताचार्यमाश्रये
अद्वैताचार्यमाश्रये
अद्वैतम
अद्वैतम
अद्वैत के नाम से
अद्वैत के नाम से
जाने जाने वाले
जाने जाने वाले
हरिणा
हरिणा
भगवान हरि से
भगवान हरि से
अद्वैतात
अद्वैतात
अभिन्न होने से
अभिन्न होने से
आचार्यम
आचार्यम
आचार्य नामक
आचार्य नामक
भक्ति शमसनात
भक्ति शमसनात
श्री कृष्ण की भक्ति के प्रसार के प्रसार से भक्त अवतारम भक्त के रूप में अवतार ईशम परम भगवान को तम उनको अद्वैत आचार्यम
अद्वैत आचार्य को
आश्रये मैं शरण में जाता हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। दोनों श्लोकों का अनुवाद साथ में पढ़ेंगे, आप पीछे पीछे दोहराइए। अद्वैत आचार्य
अद्वैत आचार्य
महाविष्णु के अवतार हैं,
महाविष्णु के अवतार हैं,
जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। हरि अर्थात परमेश्वर से
अभिन्न होने के कारण
वे अद्वैत कहलाते हैं
और भक्ति संप्रदाय का
प्रचार करने के कारण
वे
आचार्य कहलाते हैं।
वे
भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। हरे कृष्णा। हमारे लिए अद्वैत आचार्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो भी भगवान है और भगवान के अवतार भी हैं। पंचतत्व में उनका नाम आता है, हम जानते हैं, उनका चित्र भी हम देखते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल में। सिंहासन पर पंचतत्व का चित्र होता है। तो अद्वैत आचार्य ये हैं कौन, इसका स्पष्टीकरण यहाँ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के मंगलाचरण में ही करते हैं। मंगलाचरण का एक उद्देश्य ये होता है विषय का स्पष्टीकरण, वस्तु निर्देश। तो जिस विषय में वो उस ग्रंथ में रचना पाई जाएगी उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण कि किस विषय में आज चर्चा होने वाली है। तो अद्वैत आचार्य के बारे में वो बताते हैं पहली बात कि ये महाविष्णु के अवतार हैं। दूसरी बात कि इनका मुख्य कार्य है माया के द्वारा सृष्टि का सृजन करना। तीसरी बात है क्योंकि वो परमेश्वर या भगवान से अभिन्न है इसलिए उनका नाम है अद्वैत, और क्योंकि वो भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं इसलिए उनका नाम है आचार्य। तो भगवान के भक्तों के स्वामी हैं और भक्तावतार हैं, इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं आचार्यम अद्वैत आचार्यम आश्रये, मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूं। तो महाविष्णु कौन है? महाविष्णु पुरुष अवतार है। कोई बता सकते हैं कि क्रम क्या है भगवान के विस्तार का महाविष्णु तक?
विष्णु
उनसे पहले,
बलराम से चतुर्व्यूह,
चतुर्व्यूह से कौन,
शंकर्षण प्रद्युम्न, उसमें उसे शंकर्षण से फिर से दूसरा चतुर्षण से महाविष्णु,
चतुर्व्यूह फिर नारायण, दूसरे चतुर्व्यूह फिर संकर्षण उनसे महाविष्णु। और वैसे जितने भी भगवान के नारायण स्वरूप हैं वैकुंठ जगत में वो सब इन चतुर्व्यूहों से ही अंततः उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं, सब अभिन्न हैं। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो अद्वैतम का मतलब है कि इस जितने भी रूप हैं रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नानावतारम अकरोत भुवनेशु, किंतु ये सारे जितने भी अवतार हैं ये अद्वैत है। अभी अद्वैत शब्द का अर्थ अभी निराकारवादियों से जुड़ा जाता है। जब हम कहते हैं अरे ये तो अद्वैतवादी है, ये निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, इसलिए कभी कभी भक्तों के मन में ये संशय उत्पन्न होता है कि अद्वैत आचार्य ऐसे कैसे नाम हो गया। तो क्योंकि कैवल्यम नरकायते, भक्तों के लिए कैवल्य या निराकार में लीन होना ये एक नारकीय अवस्था मानी जाती है, नरक के बराबर मानी जाती है, इसलिए भक्तों को ये निर्विशेषवाद दर्शन आदि सुनना भी अच्छा नहीं लगता। सुनना तो क्या, ऐसे नाम से भी कुछ घृणा सी हो जाती है कि अरे अरे अद्वैत अद्वैत ये क्या है, निराकार निर्विशेष, मैं भगवान हूँ, मुझ में भगवान में अंतर नहीं है, हम सब भगवान हैं। तो भक्तों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ अद्वैत कैसे आ गया यहाँ पर नाम। तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका कारण दूसरे श्लोक में बताया गया है, अद्वैत अद्वैतम हरिणाद अद्वैत आचार्यम भक्ति शमसनाद। तो अद्वैतम हरिणाद अद्वैतम अद्वैतम हरिणाद अद्वैतात। तो अद्वैतात तो अद्वैतम अर्थात जो अद्वैत के नाम से जाने जाते हैं वो भगवान हरि से अद्वैत हैं। अद्वैत मतलब जिसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो क्योंकि ये अद्वैत जो अद्वैत नाम से जाने जाते हैं वैसे क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि हरिणात हरिणात मतलब हरि से वो अभिन्न है अद्वैत है, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। तो ये उनका नाम। और आचार्य क्यों है, भक्ति शमसनाथ, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करते हैं तो आचार्य। परंतु अद्वैत के पीछे उनका नाम रखने का कारण है क्योंकि वो भगवान हरि से अभिन्न है अद्वैत है। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, जिसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। जब भिन्नता होती है तो वो द्वैत हो जाता है, दो हो जाते हैं। कैसे, तो जैसे जीव और भगवान। तो निराकारवादी क्या कहते हैं कि जीव और भगवान एक है, कोई भिन्नता नहीं है दोनों में, इसलिए हम सब एक हैं। और फिर कोई ना कोई ऐसे गलत शास्त्र वाक्यों को लेते हैं और उसका अर्थ इस प्रकार से बतलाते हैं कि हम सब एक हैं, तत्वमसि सोहम इत्यादि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि अवश्य, मैं ब्रह्म हूँ परंतु अहम परब्रह्मास्मि नहीं है, मैं परब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ परंतु परब्रह्म नहीं हूँ। तो हम द्वैत हैं इस दृष्टि से। जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो द्वैतवादी संप्रदाय माने जाते हैं क्योंकि वो जीव और भगवान में भिन्नता देखते हैं। और दूसरी ओर जो निराकारवादी है, जो अद्वैतवादी होते हैं, वो इस भिन्नता को नहीं देखते हैं। हर दृष्टि से जीव भगवान से एक है ऐसे मानते हैं। तो यहां पर अद्वैत किस दृष्टि से कहा गया, क्योंकि शब्दों का अर्थ जो होता है वो संदर्भ पर भी निर्भर होता है। एक शब्द का अर्थ एक संदर्भ में एक हो सकता है, दूसरे संदर्भ में उसी शब्द का अर्थ दूसरा हो सकता है। जैसे आत्मा, आत्मा शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। आत्मा है आत्मा अर्थात जीव, अध्यात्म जीव जो सच्चिदानंद है। किंतु श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में और प्रवचनों में समझाते हैं कि आत्मा के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी मन को भी आत्मा कहते हैं, कभी कभी शरीर को भी आत्मा कहते हैं। हालांकि साधारणतः जीव को ही आत्मा कहा जाता है। तो कभी कभी यदि किसी श्लोक में हमने आत्मा देखा तो हो सकता है उसका अर्थ मन या शरीर भी हो। इसलिए संदर्भ के ऊपर ये निर्भर होता है कि किसी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो ठीक उसी तरह से साधारणतः जैसे आत्मा अर्थात जीव ये साधारण अर्थ होता है, उसी प्रकार से अद्वैत अर्थात जैसे ये अद्वैत संप्रदाय जीवात्मा के संदर्भ में इसका अर्थ ये होता है कि जीव भगवान से अभिन्न है। परंतु वैष्णव कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये भिन्न है। परंतु वैष्णव दृष्टि से ये जो अद्वैत शब्द है इसका और एक अर्थ है कि जब भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं वो भगवान से अभिन्न होने के कारण, अद्वैत होने के कारण उनको भी अद्वैत कहते हैं। और प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्यों में अद्वैत शब्द का और एक सुंदर अर्थ बतलाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का नाम अद्वैत इसलिए भी है क्योंकि उनके शरीर और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, वो द्वैत नहीं है। हमारे लिए ऐसा द्वैत भावना आती है क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए एक भेद है, एक द्वैत है। हमारे आत्मा शरीर अलग है परंतु भगवान का शरीर ही आध्यात्मिक है। तो अंदर बाहर सब कुछ भगवान भगवान ही है। जैसे एक पूर्व राष्ट्रपति रहे भारत के, तो उन्होंने अपने भगवद गीता के तात्पर्यों में टीकाओं में कहा कि जब भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है, आध्यात्मिक भौतिक इत्यादि सब, तो भगवान कृष्ण नहीं है। जो भगवान कृष्ण के अंदर जो निराकार है वो है, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के अंदर में बाहर में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए उनका जो शरीर है वो शरीर ही आध्यात्मिक है, वो संपूर्ण शरीर सच्चिदानंद है, इसलिए अंदर बाहर का कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान को भी अद्वैत कहते हैं। और क्योंकि अद्वैत आचार्य उस अद्वैत भगवान से अद्वैत हैं, इसलिए उनका नाम अद्वैत हो गया। हाँ, तो इसलिए हमें ये भेद करना चाहिए, ऐसे निराकारवादियों का स्मरण नहीं करना चाहिए अद्वैत आचार्य की का नाम सुनकर। कभी कभी जब गृहस्थ भक्त आते हैं कि हमारे बच्चों का नाम रखिए, तो वो स्वयं कभी कभी नाम दे देते हैं कि ऐसे नाम देते हैं, तो कभी कभी अद्वैत भी लिख देते हैं। तो ये ठीक है यदि इसका अर्थ हम सही ढंग से समझें तो, परंतु बाहर की दुनिया में लोग अद्वैत शब्द को निराकारवाद की दृष्टि से देखते हैं। साधारणतः भक्ति संप्रदायों से संपर्क बहुत कम लोगों का है, अधिकतर जिन्होंने भी सुना है वो सब मायावाद दर्शन ही, चाहे वो शंकराचार्य के संप्रदाय से जुड़े हुए हों या किसी अन्य साधु बाबा से जुड़े हुए हों। तो वैष्णव अधिकृत वैष्णव संप्रदायों से जुड़े हुए बिना व्यक्ति या तो निराकारवाद होगा वादी होगा या तो शून्यवादी होगा। तो उसकी उसके जो निष्कर्ष हैं या सिद्धांत हैं वो ऐसे ही होंगे, वो भगवान को व्यक्ति नहीं मानेंगे, या भगवान को व्यक्ति मानते हैं फिर भी तो गलत व्यक्ति को भगवान मानते हैं। ये समस्या है, अधिकतर लोग भगवान को निराकार मानते हैं, और जो लोग समझते हैं कि भगवान व्यक्ति हैं वो गलत आदमी गलत व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं। तो इसलिए बाहर की दुनिया में जब कोई बच्चे को अद्वैत बुलाते, अद्वैत आ जाओ, तो उनके मन में शंकराचार्य होते हैं, उनके मन में यही होता है कि हम भी भगवान हैं। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं भक्तों ये अद्वैत नाम रखिए मत, यद्यपि हम इसको अलग तरह से समझते हैं, परंतु बाहर के लोग ऐसे नहीं समझेंगे। उसी तरह से चैतन्य, ये एक बहुत ही लोकप्रिय नाम है हमारे गृहस्थ भक्तों के लिए, क्योंकि क्या है गृहस्थ आश्रम में रिश्तेदारों की परवाह बहुत होती है। रिश्तेदार बहुत कृष्ण का नाम रख लिया ना, बहुत भक्तिमय नाम रख लिया, तो रिश्तेदार थोड़े शर्मिंदा हो जाते, सोचते अरे अरे ऐसा क्यों नाम रखा, कोई आधुनिक नाम रखो, है ना, थोड़े फैशनेबल नाम आजकल बहुत हैं। आजकल के नाम देखेंगे आप लोगों में भगवान के नाम से दूर 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 जाते हैं, और अच्छे संस्कृत नाम भी नहीं रखेंगे, कोई यहाँ वहाँ से कुछ नाम निकालेंगे, कोई इधर उधर के शब्दों का मिश्रण कुछ जोड़ फोड़ कर करके कुछ नाम बना देंगे। तो फिर वो चैतन्य नाम रखने से क्या होता है, ठीक है, ये उन भक्तों के मन में क्या है, चैतन्य महाप्रभु, परंतु बाहर के लोग क्या सोचे, चैतन्य, हम चैतन्य, निराकार चैतन्य, सब कुछ चैतन्य है ना, खास करके महाराष्ट्र कर्नाटक में वो चैतन्य, ओम चैतन्य। तो चैतन्य मतलब वो चेतना जो सर्वव्यापी है, हम सब में है, हाँ है, हम सब में चेतना है, परंतु आत्मा परमात्मा में अंतर है ना, भगवान की चेतना में हमारी चेतना में तो अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए चैतन्य नाम ठीक है, जब हम समझेंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि ये चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं या किसी शुद्ध चैतन्य की बात कर रहे हैं। परंतु बाहर की दुनिया के लोगों का विचार ऐसे नहीं होता है, इसलिए ये अद्वैत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, इस श्लोक की व्याख्या प्रभुपाद करते समय भी इसी बात को कहते हैं, क्योंकि कि भगवान कृष्ण के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। तो अद्वैत आचार्य का नाम अद्वैत क्यों है,
दो कारण बताया, तो वह हरि से भिन्न है।
हाँ, तो अद्वैत आचार्य, उनका नाम अद्वैत इसलिए है क्योंकि वो हरि से अभिन्न है, अद्वैत, और स्वयं हरि का नाम भी अद्वैत है, ठीक है। तो अद्वैत नाम अद्वैत आचार्य को इसलिए पढ़ा है दो कारणों से, कौन से दो कारण हैं, कोई बताओ। हाँ,
हरि से अभिन्न है और हरि का नाम भी
अद्वैत है, तो हरि से अद्वैत है और हरि का नाम भी अद्वैत है, तो इसलिए उनका नाम अद्वैत हो गया, ठीक है। और आचार्य क्यों है, क्योंकि उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो ये महाविष्णु, महाविष्णु जगतकर्ता, ये तस्य अवतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वरः। तो जो महाविष्णु हैं, तस्य अवतार है, उनके अवतार हैं, कौन उनके अवतार हैं, अद्वैत आचार्य ईश्वरः। तो अद्वैत आचार्य ईश्वर हैं और वो उनके अवतार निश्चित ही हैं, एव निश्चित रूप से, अयम ये अद्वैत आचार्य एव निश्चित ही, तस्य अवतार, तस्य मतलब उनका, किनका, महाविष्णु। वो महाविष्णु कौन है, जगतकर्ता है, और किस तरह से जगत का सृजन करते हैं, मायया, यह सृजत्यदः। तो माया के, अपनी माया शक्ति के द्वारा सृष्टि का सृजन करने वाले महाविष्णु के अद्वैत आचार्य अवतार हैं, इसलिए उनको भक्तावतार भी कहते हैं, जैसे दूसरे श्लोक में कहा गया है ना, भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम ईश्वर अद्वैताचार्यम आश्रये। अभी पंच तत्व का मंत्र कौन सा है, शक्तिकम। तो पंच तत्वात्मकम कृष्णम, तो कृष्ण ये पांच तत्वों में अपने आप को प्रकट करवाते हैं, पंच तत्व आत्मकम, ये आत्मा शब्द फिर से आ गया, आत्मकम मतलब क्या, स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को स्वयं पांच तत्वों में प्रकट करवाते हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्णम। तो ये कौन से पांच तत्व हैं कृष्ण के, एक एक करके क्रम से बोलिए उस श्लोक के अनुसार, पंच तत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति भक्ति शक्तिकम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? भक्त रूप। भक्त रूप कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम, तो भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु। उसके बाद भक्त अवतार, भक्त अवतार कौन है? अद्वैत आचार्य। और फिर भक्ताख्यम, आख्यम मतलब कहा जाता है, उनका नाम है। तो भक्त के कौन है? श्रीवास ठाकुर। और उसके बाद भक्त शक्ति कौन है? गदाधर पंडित, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य है, रूप है, अवतार है। तो इस प्रकार से ये पंच तत्व में से जो भक्तावतार है, भक्त अवतार, वो अद्वैत आचार्य है। और यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये स्वयं महाविष्णु हैं, महाविष्णु के अवतार। किस तरह से महाविष्णु के अवतार? कभी कभी वो शिव जी के अवतार माने जाते हैं, कभी कभी सदाशिव के अवतार माने जाते हैं, कभी कभी महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो हम कैसे समझें इसको? किसके अवतार, किन के अवतार है ये, कोई बता सकते हैं आप में से कोई?
महाविष्णु और शिवजी के कंबाइन,
महाविष्णु और शिवजी के मिलित अवतार हैं। ठीक है, किस तरह से, किस तरह से, किस दृष्टि से ऐसे हम कह सकते हैं कि दोनों के अवतार हैं? हाँ, उत्तम श्लोक प्रभु।
महाविष्णु क्रिएशन से प्रकट करते हैं जब ब्रह्मा जी का सोचता होता है तो सृष्टि समझ लेते हैं, और इस हिसाब से जब महाविष्णु शिव जी का कार्य है कि सहार करना।
ठीक है, और एक एक नाम मैं सुनना चाहता हूँ आप सबसे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कि मैं संकर्षण का नाम नहीं सुनना चाहता, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में
भक्ता अवतार
सदाशिव। सदाशिव कौन है? हाँ, विष्णु है। कहाँ कहाँ निवास करते हैं? गोलोक में। सदाशिव ये भी एक नारायण स्वरूप है जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वो विष्णु हैं। ठीक है, और जैसे भगवान नारायण के अनगिनत अनंत रूप हैं, चतुर्भुज रूप वैकुंठ लोकों में हैं, वैसे एक वैकुंठ लोक का नाम है सदाशिव लोक। तो ये सदाशिव लोक एक वैकुंठ लोक है, और इसके अधिष्ठाता देव भी एक विष्णु तत्व है जिनका नाम है सदाशिव। तो ये सदाशिव, ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये महाविष्णु के अवतार हैं। और अद्वैत आचार्य ये सदाशिव के अवतार हैं। तो महाविष्णु सदाशिव के अवतार, सदाशिव महाविष्णु के अवतार, इसलिए हम कह सकते हैं कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जो कि यहाँ बतलाया गया है। और साथ साथ ये सदाशिव के भी अवतार हैं, तो दोनों के अवतार हैं। परंतु अब ये प्रश्न होता है, ये सदाशिव तो विष्णु है ना, तो फिर शिव कहाँ आ गए? क्या उत्तर? हाँ,
जब भौतिक जगत के संबंध में आता है तो फिर वो, क्योंकि जैसे ब्रह्म संहिता में आरंभ में कुछ लोगों ने, मूल तो हर चीज तो भगवान से आता है, लेकिन इन संसार में शिव जी के द्वारा, शिव के तत्व के द्वारा, ऐसे पांच श्लोकों में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं।
परंतु सदाशिव और शिव में क्या संबंध?
वो सदाशिव के ही ये एक रूप है जो भौतिक जगत में आता है।
हाँ, बिल्कुल ठीक, वही जो सदाशिव है वैकुंठ लोक में, जो एक विष्णु रूप है, उनके विस्तार हैं शंभू, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में हुआ है। उनके विस्तार या उनके या एक हाँ उनके विस्तार हैं शंभू, और शंभू का जो निवास करते हैं वो भी शिवलोक कहा जाता है या सदाशिवलोक कहा जाता है। परंतु इस सदाशिवलोक में और उस सदाशिवलोक में अंतर ये है कि वो सदाशिवलोक विरजा के उस पार है, और ये सदाशिवलोक या शिवलोक विरजा में है या विरजा के इस पार में है। वैसे महाकाल धाम भी तट पे ही है। ठीक है, ठीक।
कैलाश,
तो कैलाश वही है जो कि जहाँ पे शंभू निवास करते हैं। तो शंभू ये मूल शिवजी हैं भौतिक जगत के। ये शंभू भी सदाशिव विष्णु से आते हैं। जब सदाशिव विष्णु एक ऐसे रूप धारण करते हैं जिसमें कि वो भौतिक सृष्टि का स्पर्श करते हैं तो वो शंभू या शिव कहलाते हैं। सदाशिव विष्णु वो कभी भौतिक सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। जैसे महाविष्णु गर्भोदकशाय विष्णु क्षीरोदकशाय विष्णु वो भी भौतिक सृष्टि का स्पर्श नहीं करते हैं, ये भगवद गीता में स्पष्ट है। परंतु जब विष्णु अर्थात सदाशिव विष्णु जब एक ऐसे रूप स्वीकार करते हैं जिसमें कि वो स्पर्श करते हैं, गुण अवतार बन जाते हैं। कौन से गुण का अवतार है वो? तमोगुण। तो गुणावतार का ये मतलब नहीं है कि वो तमोगुण में है, इसका मतलब ये है कि वो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। परंतु कभी कभी स्पर्श हो जाता है ना, हम जब किसी चीज से का निर्देशन करते हैं तो उस चीज का स्पर्श कभी हो जाता है, तो शिव जी का स्पर्श कभी हो जाता है, फिर भी वो दिव्य स्तर में रहते हैं। तो वो शंभू उनसे वो महाविष्णु के स्तर में रहते हैं। जैसे महाविष्णु एक होते हैं, फिर हरेक ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदकशाय विष्णु उत्पन्न होते हैं, और फिर हरेक जीवात्मा के हृदय में हरेक प्राणी के हृदय में क्षीरोदकशाय विष्णु रहते हैं ना। तो महाविष्णु एक, गर्भोदकशाय विष्णु कितने हैं? जितने ब्रह्मांड हैं उतने। ठीक उसी प्रकार से शंभू मूल भौतिक सृष्टि के लिए एक, फिर वही शंभू अपने आप को विस्तार करते हैं शिव के रूप में, जो कि फिर हरेक ब्रह्मांड के भीतर जो कैलाश है उसमें प्रकट होते हैं। तो वहां का कैलाश भी यहां कैलाश में आ जाता है, अभिन्न है वो भी। तो जैसे ये शिव जी के भी अनेक रूप है, हर एक ब्रह्मांड में एक शिव जी हैं, एक ब्रह्मा जी हैं, गर्भोदकशाय विष्णु हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव हर एक ब्रह्मांड में होते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि शिव जी सदाशिव से आते हैं और अद्वैत आचार्य भी सदाशिव से ही आते हैं, इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो अद्वैत आचार्य भी शिव जी से ही संबंधित हैं, शिव जी का ही भी रूप माने जाते हैं। तो कभी कभी उनको शिव जी का रूप माना जाता है, कभी सदाशिव का रूप है, कभी महाविष्णु का रूप। इस प्रकार से ऐसे अद्वैत आचार्य तत्व इनको समझना इतना आसान नहीं है।
ऐसे कहा जाता है कि शिव तत्व जो है वो विष्णु तत्व भी नहीं है और जीव तत्व भी नहीं है, तो ये अलग ही तत्व है। उसी प्रकार से फिर लेकिन अद्वैत आचार्य जो है वो विष्णु तत्व है, तो हालांकि वो भगवान भौतिक जगत के संपर्क में आ रहे हैं, भौतिक जगत को संहार करते हैं, तो हालांकि वो अभिन्न है लेकिन भिन्न भी है, शिव जी से अभिन्न है और भिन्न एक भी है, इसलिए भी उनका नाम अद्वैत
नहीं, वो वैसे विष्णु तत्व है अद्वैत आचार्य। जैसे शिव जी शिव तत्व है, वो प्राय विष्णु तत्व है, परंतु थोड़े उसमें कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्पर्श कर लिया ना उन्होंने एक बार, दूध और दही बन गया ना, तो इसलिए वो विष्णु तत्व नहीं रहते, परंतु जीव तत्व भी नहीं है, तो उनका तत्व सदैव शिव तत्व ही रहेगा। परंतु अद्वैत आचार्य ऐसे नहीं, वो विष्णु तत्व ही है, क्योंकि वो महाविष्णु या सदाशिव के अवतार है, इसलिए तो उनको हमें विष्णु तत्व ही मानना चाहिए। और दूसरी जगह चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि तीनों ही प्रभु हैं। कौन तीन? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य। तीनों प्रभु किस दृष्टि से है? वो विष्णु तत्व हैं, परंतु तीनों प्रभु में से एक महाप्रभु है और दूसरे दो प्रभु हैं, और ये दो प्रभु सदैव महाप्रभु की सेवा करना चाहते हैं, परंतु विडंबना ये है कि वो महाप्रभु इन दो प्रभुओं की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए एक बार क्या हुआ, क्योंकि अद्वैत आचार्य आयु में भी चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे प्रकट लीला में, तो महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के आयु में कितने वर्ष का अंतर था? 52 वर्ष। और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव किस आयु में हुआ?
1486।
नहीं, मतलब कि उनकी आयु क्या थी?
52।
उनका तिरोभाव
48 साल।
48। तो 52 जोड़ दीजिए
100।
तो चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के समय अद्वैत आचार्य की आयु 100 वर्ष की थी, तो 52 वर्ष से बड़े थे वो। श्रीवास ठाकुर भी अनेक वर्षों से बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, तो क्योंकि वो इतने बड़े थे आयु में और इतने महान भक्त थे, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त रूप है ना, भक्त का रूप स्वीकार करके आए हैं, इसलिए वो अद्वैत आचार्य की सेवा करना चाहते थे, अपना उनको अपना वरिष्ठ मानते थे, क्योंकि लौकिक दृष्टि से और अलौकिक दृष्टि से दोनों से ही ये श्रेष्ठ थे उनके, ऐसे चैतन्य महाप्रभु मानते थे। और संसार की दृष्टि से भी अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, तो इसलिए अद्वैत आचार्य ईश्वरपुरी के गुरु भाई हो गए, और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि अद्वैत आचार्य मेरे गुरु के गुरु भाई हैं, तो मेरे लिए गुरु तुल्य हैं, और वो मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरे चरणों को पकड़ रहे हैं और ऐसे, तो ये ठीक नहीं है, मुझे उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। परंतु अद्वैत आचार्य जानते थे कि ये आयु में भले कम हो, ये मेरे गुरु भाई के शिष्य भले क्यों ना हो, परंतु ये तो स्वयं भगवान है, इसलिए मैं इनकी सेवा करूंगा। इस प्रकार से दोनों के बीच में स्पर्धा होती थी, और अद्वैत आचार्य चाहते थे कि ये मुझे कभी अपना सेवक माने चैतन्य महाप्रभु, परंतु चैतन्य महाप्रभु कभी भी उनको अपना सेवक नहीं मानते थे, उनको प्रभु ही मानते थे। अद्वैत आचार्य, आप मेरे प्रभु हैं। केवल विशेष रूप से जब कोई महाप्रकाश लीला में कोई लीला हुई इत्यादि, ऐसे कई लीलाएं थीं जिसमें जिनमें कि महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को जब अपना भगवत रूप भगवान दिखाया महाप्रभु ने, तब उन्होंने अपना सेवक मान लिया अद्वैत आचार्य को, परंतु अन्यथा वो नहीं मानते थे। तो अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हो गए कि अभी क्या करना चाहिए, एक मुझे कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कि ये मुझे अपना सेवक मान लें।
तो कैसे व्यक्ति अपने किसी अन्य व्यक्ति को सेवक कब मान सकता है? जब उसको डांटता है। हमसे जो वरिष्ठ है उनको हम थोड़ी ना डांट सकते हैं, नहीं डांट सकते ना। जो हमारे गुरुतुल्य है उनको हम कैसे डांट सकते हैं? परंतु जो हमसे कनिष्ठ है उनको डांटा जा सकता है, डांटना चाहिए। तो जब ये डांटते हैं, डांटना चाहिए मतलब तो आवश्यकता पड़ने पर जब होती है, डांट पड़ती है, तो फिर व्यक्ति समझ सकता है कि हाँ, इन्होंने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया है। तो अद्वैत आचार्य ने एक दिव्य षड्यंत्र रचाया। उन्होंने सोचा मुझे ऐसे कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि महाप्रभु को क्रोध आएगा, और जब वो क्रोधित हो जाएंगे तो मुझे डांटेंगे। जब मुझे डांटेंगे तो मैं समझूंगा कि इन्होंने मुझे सेवक मान लिया है, तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा मेरा जीवन। तो महाप्रभु को कैसे क्रोधित करें? ऐसे कोई चीज करनी चाहिए मुझसे, मुझे जिसके द्वारा, जो कि महाप्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसका विरोध महाप्रभु बहुत कठोरता से करते हैं। तो ऐसे कौन सी बात है जिसका विरोध महाप्रभु कठोरता से करते हैं? मायावाद दर्शन। तो मैं ऐसे करूंगा, मैं योग वाशिष्ठ ग्रंथ का प्रचार करूंगा। योग वाशिष्ठ ग्रंथ का नाम सुना है? नहीं, नहीं सुना तो अच्छा। वशिष्ठ ये राम के गुरु थे ना, इसमें काफी अद्वैतवाद मायावाद दर्शन इसमें बताया जाता है। योग वाशिष्ठ, वशिष्ठ के द्वारा अर्थात, इसलिए वाशिष्ठ। तो एक जगह जाके वो योग वाशिष्ठ के प्रवचन देने लगे रोज। अब खबर तो फैल ही जाती है ना, तो फिर खबर पहुंच गई चैतन्य महाप्रभु के कानों में, तो इनको इतना क्रोध आया महाप्रभु को कि वो सीधे अद्वैत आचार्य के घर में गए हरिदास ठाकुर के साथ। और वहां पर अद्वैत आचार्य को कहा उन्होंने, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या भक्ति योग श्रेष्ठ है, बोलो। मैं आज तुमसे एक अंतिम निर्णय लेना चाहता हूं, तुम्हारे मन की बात क्या है स्पष्ट कर दो दुनिया के सामने। कभी इधर कुछ कह दिया, कभी उधर दूसरा ही कुछ कह दिया, ये सब नहीं चलेगा, ये द्वैतवाद नहीं चलेगा। एक बात बता दो, भक्ति योग, भक्ति या ज्ञान का पथ कौन सा श्रेष्ठ है? तो अद्वैत आचार्य कहने लगे, निश्चित रूप से ज्ञान योग का पथ, क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति फिर भक्ति का क्या मूल्य होगा, क्या है? तो महाप्रभु को आया गुस्सा, वैसे भी गुस्सा आ गया था क्योंकि ये सब खबरें आ रही थी इधर उधर से, और अब अपने कानों से महाप्रभु ने सुन लिया कि इस तरह से अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, प्रहार किया और बहुत पिटाई की उनकी, अपने कर कमलों से पिटाई कर दी। और उनकी पत्नी सीता देवी अद्वैत आचार्य की वहां पर थी, और वो तो प्राय बेहोश हो पड़ी। उनको पता था कि ये महाप्रभु कौन है, ये भी पता था कि ये लीला है, फिर भी ये तो बूढ़े हैं व्यक्ति, अरे इतने बूढ़े हैं और आप इतनी जोर से इनको मार रहे हैं, क्या होगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। और उधर हरिदास ठाकुर भी डर के मारे कांप रहे थे, कृष्ण का नाम ले रहे थे। उनको भी पता था ये लीला है, फिर भी देखी नहीं जा रही थी ये लीला, इस तरह की लीला थी। तो फिर अद्वैत आचार्य को जब पिटाई कर ली, फिर संभल गए, तब चैतन्य महाप्रभु ने समझ लिया कि ये षड्यंत्र था। और अद्वैत आचार्य जितने कोई खुश व्यक्ति नहीं थे उस दिन। आज महाप्रभु ने मुझे अपना सेवक मान लिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। और महाप्रभु ने कहा तुमने धोखा दिया मुझे, चीटिंग किया, धोखा दिया मुझे तुमने, षड्यंत्र करके इस तरह से मुझसे कार्य करवा लिया, मेरी गति क्या होगी क्या पता। अद्वैत आचार्य जैसे महाविष्णु के अवतार महान भक्त को के प्रति मैंने ऐसे अपराध कर दिया, प्रहार किया उनके ऊपर, लेकिन अद्वैत आचार्य बहुत ही आनंद में थे। तो खैर ऐसे लीलाएं चलती थी, इसलिए भगवान की लीलाओं को समझना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। तो अद्वैत आचार्य भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। जिस समय अद्वैत आचार्य नवद्वीप में रहा करते थे वहां वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं था। अद्वैत आचार्य के दो घर थे, एक शांतिपुर में और दूसरा नवद्वीप में। तो कभी शांतिपुर में रहते थे तो कभी नवद्वीप में। तो नवद्वीप ये एक शिक्षण का स्थान था और वहां पे बहुत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते थे, भट्टाचार्य, उपाध्याय, मिश्र, चक्रवर्ती, ऐसे सब रहते थे, एक से बढ़कर एक, बड़े से बड़े विद्वान। परंतु एक से बढ़कर एक अभक्त, बड़े विद्वान, वेद पठन, वेद मंत्रों में निपुण प्रवीण, परंतु भक्तिहीन, भक्ति शून्य वातावरण था नवद्वीप में। ऐसे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि गलती से भी कोई भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, और जो ले भी लेते थे अनायास, वो ऐसे एक क्या कहते हैं, लेने के लिए लेते थे, क्योंकि एक प्रथा थी तो लेते थे। जैसे पुंडरीकाक्ष गोविंद कह के वो स्नान करते थे, परंतु पुंडरीकाक्ष कौन है, गोविंद कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जैसे हिंदू समाज में कई लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसे यज्ञों में अग्निहोत्र जब होता है, हवन वगैरह होता है, तो कई लोग कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, विवाह यज्ञ में भी ऐसे करते हैं, लेकिन कहने के लिए कह देते हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, इसको नहीं जानते हैं। तो श्री कृष्णार्पणमस्तु का बहुत गहरा तात्पर्य है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ ये सब कुछ मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण का एक प्रधान स्थान होता है, मुख्य स्थान, केंद्र बिंदु होते हैं श्री कृष्ण। परंतु ऐसे कहने के लिए कह देते हैं, एक ये औपचारिकता है, एक रिवाज है, लोग कहते हैं, हम भी कह देते हैं पुंडरीकाक्ष गोविंद, स्नान करते समय गंगा में। तो जो लोग गलती से ले भी लेते थे, औपचारिकता से ले भी लेते थे भगवान कृष्ण का नाम, उनको समझ में नहीं आता था कि वो किनका नाम ले रहे हैं और इस नाम का तात्पर्य क्या है, इसका महत्व क्या है। और साधारणतः ये लोग बड़े विद्वान होने के बाद भी केवल अपने फालतू तर्कवाद में ऐसे अपना समय बर्बाद करते थे, कोई व्याकरण के ऊपर, कोई इसके ऊपर, उसको कोई अन्य विषय के ऊपर वाद करते रहते थे। और अन्य जो थे बड़े बड़े ब्राह्मण, वो अपने देवी देवताओं की पूजा में उनके यज्ञ करना, ये करना, कोई अग्निहोत्र करना, इसमें सब लगे रहते थे, लेकिन भक्ति में कोई भी रुचि नहीं रखता था। गिने चुने वैष्णव वहां पर थे, वैष्णवों की संख्या भी थी, परंतु वो अल्पसंख्यक थे। और अल्पसंख्यक होने के कारण वो उनको बहुत दुख हो रहा था। और उन वैष्णव समाज में जो प्रमुख थे वो थे अद्वैत आचार्य। तो वो प्रतिदिन सत्संग करते थे और जितने भी थोड़े बहुत वैष्णव थे वो आते थे, उनसे भगवद गीता श्रीमद् भागवत आदि से कथा सुनते थे। अद्वैत आचार्य सदैव बहुत ही भक्तिमय तात्पर्य देते थे भगवद गीता का और श्रीमद् भागवत का, और भक्ति की व्याख्या बहुत ही सुचारू रूप से करते थे। और जितने भी वैष्णव वहाँ आते थे उनको बहुत ही प्रेरणा मिलती थी भक्ति में, बहुत दिव्य आनंद का अनुभव होता था उनको। और प्रतिदिन वो ऐसे राह देखते थे कि कब हम अद्वैत आचार्य के पास जाएंगे कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो ऐसे भक्ति तो कर रहे थे ये लोग, बोले भक्त, परंतु बहुत कम थे संख्या में। तो अद्वैत आचार्य इतने दुखी हो गए थे बाहर के वातावरण को देखकर कि ये लोग अपने आप को भट्टाचार्य, मिश्र इत्यादि कहते हैं, उपाध्याय आदि, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, परंतु वेदों का सही निष्कर्ष क्या है इनको नहीं पता है। तो अभी ये विद्वान लोगों में ये हालत है, तो फिर बाहर नवद्वीप के बाहर क्या दशा है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यहाँ भगवान के अवतार का आना आवश्यक है, और ये अंश अवतार से काम नहीं चलेगा, पूर्ण अवतार आने चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है, ऐसे अद्वैत आचार्य सोच रहे थे। तो प्रतिदिन अनेक वर्षों तक अद्वैत आचार्य ने जोर जोर से पुकारा भगवान कृष्ण को, गंगा जल लेकर, और गंगा जल और तुलसी वो शालिग्राम को अर्पण करते थे और भगवान को पुकारते थे रोज कि आइए आप प्रकट हो जाइए, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आपके अतिरिक्त और कोई इन लोगों का उद्धार नहीं कर पाएगा, आपको स्वयं आना होगा, अंश आपके कोई अंश अवतार को मत भेजिए, आप स्वयं आइए। और कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वो कई श्लोकों का उच्चारण भी उस समय करते थे। कोई श्लोक, एक श्लोक बता सकते हैं आप?
हाँ,
बहुत अच्छा। तो इसका शब्द भेद करके अर्थ समझाइए।
तुलसी दल मात्रेना, तुलसी का दल, जलस्य चलुकेन, मतलब
चलुकेन, चुलुक, चुलुक मतलब ये,
जल के साथ तुलसी अर्पण करते।
कौन सा जल?
गंगा
जल खास करके। हाँ,
विक्रीणते स्वमात्मानं, जो भगवान कृष्ण उनको अर्पण करने के बाद वो बिक जाते हैं।
विक्रीणते,
विक्रीणते,
विक्री, बिक्री, बिक्री, बिक्री करना, बंगला में बोलते हैं बिक्री, बेचना, मराठी में बोलते हैं विकर, खरीदना या बेचना, उसको विकर, विक्रीणते, विक्रीणते। भगवान क्या करते हैं? बेच डालते हैं। विक्रीणते स्वम आत्मानम, अपने आप को बेच डालते हैं। भक्तेभ्य, क्यों, किन किन के हवाले कर देते हैं अपने आप को? भक्तेभ्य, भक्तों के हवाले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त वत्सल है। तो इसलिए वो ऐसे श्लोक और अन्य श्लोकों का भी उच्चारण करते थे। तो भगवान से कहते थे आप आइए, अवश्य आइए, आइए आप, कृपया आइए। और अंततः काफी समय के बाद फिर भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और आए। हरिदास ठाकुर भी इसी तरह से प्रार्थना करते थे। तो हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, ऐसे भक्तों की आवाज, उनकी पुकार को सुनकर भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो अद्वैत आचार्य ऐसे अपने कथा को जारी रख रहे थे। उधर चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम क्या था? विश्वरूप। विश्वरूप जो है अपने पौगंड अवस्था से लेकर ही वो अद्वैत आचार्य के भगवत गीता और भागवत प्रवचनों में जाते थे और इतने प्रभावित हो जाते थे उनके प्रवचनों को सुनकर कि उनके हृदय में अति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। और एक दिन विश्वरूप घर से गायब हो गए। जब जगन्नाथ मिश्र सची माता उठी, देखा कि अरे विश्वरूप कहाँ है, विश्वरूप थे ही नहीं वहां पर। तो बाद में पता चला कि वो संन्यास लेने के लिए चले गए, घर छोड़कर बिना बताए चले गए। और बाद में चैतन्य महाप्रभु को कब उनके बारे में खबर मिली, कहाँ पे, पंढरपुर में, किनके द्वारा, श्री रंगपुरी के द्वारा उनको पता चला। रंग श्री रंगपुरी कौन थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और एक शिष्य। तो बाद में पता चला महाप्रभु को, लेकिन यहाँ पे विश्वरूप ने संन्यास लेने के लिए घर छोड़ के वो चले गए थे। उनका नाम क्या हुआ, शंकरारण्य। शंकरारण्य है कि नहीं, शंकरारण्य हमर दास, जस्ट नाउ कमिंग। तो उनका नाम हो शंकरारण्य, अरण्य। अरण्य ये भी एक संन्यास का पद है। तो खैर, तो ऐसे जब हो गया तो अभी जगन्नाथ मिश्र और सची माता निमाय के बारे में बहुत घबराने लगे। निमाय तो बहुत छोटे थे। जब विश्वरूप छोड़ गए घर, विश्वरूप उनका नाम था ना बड़े भाई का, तो उनकी आयु थी, आगे किशोर अवस्था या तरुण अवस्था में पहुंच गए थे वो, परंतु उस समय निमाय तो बहुत छोटे थे चैतन्य महाप्रभु। तो वो भी जाने लगे अद्वैत आचार्य के पास। तो जगन्नाथ मिश्र को इतना दुख हुआ था विश्वरूप के जाने से कि उस विरह को वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना प्राण त्याग किया और भगवान के धाम में चले गए। तो सची माता अकेली थी और अब निमाय पंडित, निमाय जो थे वो भी जाने लगे वहाँ, तो उनको बहुत डर लगने लगा कि अब एक लड़का तो गया संन्यास लेके, अब दूसरे लड़के का क्या होगा, वो भी अभी इस तरह का झुकाव दिखा रहा है, तो उसको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो उसको अनपढ़ रखेंगे हम, ताकि उसे पता नहीं चले कि ये संसार का सही रूप क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है। जब पता चलेगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है तो ये संन्यास लेके ये भी चला जाएगा। हाँ, तो ऐसे सची माता सोच रही थी। और एक बार हुआ ये कि जब विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो सची माता, माँ थी ना, वैष्णव थी फिर भी माँ थी, तो उनके मन में विचार आया अद्वैत आचार्य के बारे में, इनका नाम अद्वैत किसने रख दिया। अद्वैत वो होता है तो जोड़ लेते हैं, अद्वैत मतलब जो टूटा हुआ नहीं है, जो जुड़ा हुआ है, जो लोगों को जोड़ देते हैं वो अद्वैत होते हैं। परंतु इन्होंने क्या किया, मेरे पुत्र को मुझसे भिन्न कर दिया, अलग कर दिया, द्वैत कर दिया, दो कर दिए, तो इनका नाम द्वैत होना चाहिए था, किसने इनका नाम अद्वैत रखा। तो ये सची माता ने किसी से कहा नहीं, केवल अपने मन में ऐसे सोचा, परंतु निमाय पंडित कोई साधारण पुत्र नहीं थे, तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, तो उनको पता चला कि मेरी माँ क्या सोच रही है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की तो उस समय उन्होंने सारे भक्तों के ऊपर कृपा की। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने अपना भगवत स्वरूप प्रकट किया, अन्यथा महाप्रभु कभी भी अपना भगवत स्वरूप प्रकट नहीं करते थे, बहुत ही विरला दुर्लभ ऐसे लीलाएं थी। जैसे श्रीवास ठाकुर को उन्होंने अपना रूप दिखाया या द्वैताचार्य को दिखाया, इसके अतिरिक्त केवल महाप्रकाश लीला में उन्होंने अपना भगवत स्वरूप प्रदर्शित किया और सारे भक्तों से कहा एक के बाद एक आओ और तुम्हें तुम्हारी जो भी हार्दिक इच्छाएं हैं वो कहो और मैं तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण कर लूंगा। तो जितने भी महाप्रभु के पार्षद थे एक के बाद एक महाप्रभु ने उनको बुलाया, नाम से बुलाया, वो आए और उन्होंने अपने अपने आंतरिक इच्छाओं को व्यक्त किया और महाप्रभु ने कहा तथास्तु। तो किसी ने कहा मेरे बेटे को भक्त बना दो, किसी ने कहा मेरे पत्नी को भक्त बना दो, किसी ने कहा ये वो जो भी है, और महाप्रभु ने ठीक है हो जाएगा। परंतु महाप्रभु ने इस महाप्रकाश लीला में अपनी माँ को नहीं बुलाया, सबको बुलाया परंतु सच्ची माता को नहीं बुलाया। तो सबको आश्चर्य लग रहा था कि सच्ची माता को क्यों नहीं बुलाया। तो भक्त जाके पूछने लगे बुलाइए बुलाइए, नहीं नहीं बुला सकता, मेरी माँ ने अपराध किया है द्वैताचार्य के प्रति। तो और जब तक वो अद्वैताचार्य के चरणों में पढ़ के क्षमा याचना नहीं करेंगी वो इस महान वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं होंगी। तो जब सची माता को पता चला कि अरे ऐसी बात है तो वो चले गई अद्वैताचार्य के पास और क्षमा याचना की। उधर अद्वैताचार्य और जोर जोर से बोलने लगे और सची माता के चरणों में पड़ गए, कीर्तन करने लगे सची माता के महानता और उनके सौभाग्य को देखकर। और जब वो ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो सची माता ने अवसर लिया, अवसर का फायदा उठाया, उन्होंने जाके अद्वैताचार्य के चरण कमलों की धूलि को उठा लिया, अपने स्पर्श सर पे रख दिया और क्षमा याचना शब्दों से तो की ही थी और उनके चरण धूलि भी लेके अपने सर पे लगा ली। और उस समय फिर सची माता इस वैष्णव अपराध से मुक्त हो गई और महाप्रकाश लीला में भी आ गई। तो इसलिए वैष्णव अपराध का जो विषय आता है उसमें ये इस लीला का वर्णन अवश्य होता है। तो ऐसे अद्वैताचार्य अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ, और उसके बाद जब महाप्रभु आए तो उनके पास उनके साथ भी लीला करते थे। तो ऐसे एक दो बार अद्वैताचार्य ने महाप्रभु की परीक्षा भी की, निर्धारित करने के लिए, यही है ना वो। और महाप्रभु ने कहा रे नदा नदा करके बुलाते थे उनको, क्या पहचाना नहीं, मैं वही हूं जिनके लिए तुम इतने सालों से जोर जोर से पुकार रहे थे और आज मैं आया हूं तुम्हारे सामने और नहीं पहचान पा रहे हो। तो ऐसे महाप्रभु के संग में अद्वैत आचार्य रहा करते थे। एक बार समय क्या हुआ, 12:20 12 बज गए नहीं, थोड़ा पानी पी लूंगा। ओके। थोड़ा सा बस बस। एक बार ये महाप्रभु के आविर्भाव के पहले ही हुआ होगा, अद्वैताचार्य वृंदावन धाम गए थे। वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों में गए, परिक्रमा की अनेक वनों में। और एक बार जब वो रमण रेती में थे तो उन्हें मदन गोपाल प्रकट हुए, विग्रह। तो उन्होंने उनको बड़े आनंद से स्वीकार किया। और फिर आगे जब वो वृंदावन में गए, मतलब आज जो वृंदावन है, आज जिस स्थान को अद्वैत वट कहते हैं, आप में से कितने भक्त अद्वैत वट में गए हैं? वो द्वादश आदित्य टीला मदन मोहन मंदिर के नीचे है, पास में नीचे। तो उस स्थान का नाम ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि अद्वैत आचार्य मदन गोपाल के विग्रह को लेकर वहाँ पर आए थे। एक वट वृक्ष वहाँ पर है, तो उस वट वृक्ष के नीचे अद्वैत आचार्य रहे थे थोड़े समय के लिए। और फिर वृंदावन से प्रस्थान करने के पहले उन्हें एक मथुरा के चौबे ब्राह्मण मिले थे, चौबे नाम के ब्राह्मण, उनको उन्होंने ये विग्रह दे दिया, कहा इनकी सेवा कर लो मदन गोपाल की। और फिर मदन गोपाल जी ये सनातन गोस्वामी के हाथों में आ गए। इसकी लीला आप तो सब जानते हैं। मदन गोपाल फिर जब सनातन गोस्वामी के पास आए तो फिर वो विग्रह का नाम हो गया मदन मोहन। तो मदन गोपाल विग्रह और मदन मोहन विग्रह एक ही है। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनकी सेवा वहाँ पर की, द्वादश द्वादश आदित्य टीला के ऊपर। और बाद में फिर मंदिर भी बना, सबसे पहले बड़ा मंदिर जो वृंदावन में बना पिछले 500-600 सालों में वो मदन मोहन मंदिर था। और ये मदन मोहन का विग्रह है मदन गोपाल, ये सबसे पहले अद्वैत आचार्य को प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। आप में से कोई और अद्वैत आचार्य की एक कोई लीला बता सकते हैं? कोई याद आ रहा है आपको कोई? हाँ बोलो बोलो। हाँ शायद बोलो जोर से, संक्षेप में बताओ। अद्वैत आचार्य ने शांतिपुर में नित्यानंद प्रभु और अद्वैत और चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था प्रसाद के लिए, और वहाँ पे क्या हुआ? ठीक है। तो हुआ ये कि जब आए थे प्रसाद के लिए तो अक्सर अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु आपस में उपहास किया करते थे और हास्य उपहास ऐसे चलता था उनके बीच में, एक दूसरे की मजाक उड़ाना, कुछ कहना करना। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कि भोजन तो पर्याप्त था, परंतु ये देखा कि अरे इतना ही भोजन, ये क्या क्या कंजूसी कर रहे हो, इतना इतना दे रहे हो। तो अद्वैत आचार्य ने कहा ये 10 लोगों के लिए काफी है। फिर भी नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं कैसे अतिथियों की सेवा करना। तो नित्यानंद प्रभु गुस्सा आ गया, उन्होंने थोड़े चावल लिया और ऐसे जमीन फेंक दिया। वो जमीन से लग के वो अद्वैत आचार्य के शरीर के ऊपर आए वो चावल के कण, और अद्वैत आचार्य भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा किस तरह से के कृपण गृहस्थ हो, खिलाते भी ठीक से नहीं हो। और अद्वैत आचार्य बोलने लगे अरे आप जैसे को खिलाएंगे तो मेरी जाति चली जाएगी, आप किस तरह के अवधूत हैं, कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है आपके रहने का। तो इस तरह की हंसी मजाक दोनों के बीच में कभी कभी हुआ करते थे। और चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद से इस दृश्य को देख रहे थे। बहुत अच्छा। और कौन सी लीला?
जब महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार प्रकट किए
तो सती माता पहली बार वो डर गई कि क्या हुआ चेतन महाप्रभु को क्या हुआ, तो बाद में अद्वैत आचार्य के पास उनके पास लेके गई, तो वो बोले कि ऐसा ऐसा जो रोग है वो मुझे भी हो तो
मैं वो श्रीवास ठाकुर के साथ हुआ।
ओके
श्रीवास ठाकुर अद्वैत आचार्य ने।
एक बार जब श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो अद्वैत आचार्य ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर को बुलाया और उनको भोजन कराया, प्रसाद खिलाया, तो मतलब उन्होंने बताया, हालांकि दूसरे परिवार से थे, मुस्लिम परिवार से, पर उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण से ऊपर है, ऐसा उन्होंने किया।
बहुत अच्छा। अद्वैताचार्य गृहस्थ थे और ब्राह्मण कुल के थे, इसलिए ब्राह्मणों में और सभ्य समाज में, वैदिक समाज में एक प्रथा है या एक नियम है कि पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। तो जब उन्होंने श्राद्ध किया तो उसमें ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है, उनको भोजन खिलाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है। तो हरिदास ठाकुर को बुलाया अद्वैताचार्य ने कि आप आइए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अरे आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके समाज में, मैं तो न केवल ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक यवन परिवार से हूँ और आप मुझे बुला रहे हैं और मुझे सबका सबसे प्रधान स्थान दे रहे हैं, तो अगर पूजा मेरी करवा रहे हैं आप, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाइए तो आपका प्रदूषण हो जाएगा, समाज में भी आपका तिरस्कार हो जाएगा। तो फिर हरिदास ठाकुर ने कहा मैंने जो किया है, अद्वैताचार्य ने कहा मैंने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि शास्त्रों का निष्कर्ष ये है कि वैष्णव ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है और आप सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हो, इसलिए आज मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरे पितरों का भी उद्धार हो गया आपको बुलाने के कारण। तो हरिदास ठाकुर को बुलाकर उन्हें खूब प्रसाद खिलाया अपने घर में श्राद्ध के अवसर पर अद्वैताचार्य ने। बहुत सुंदर। और कोई लीला? हाँ तम श्लोक कौन?
उनका सेवा अच्छा ठीक से नहीं होगा तो अपराध भी हो सकता है, तो चेतन महाप्रभु बुलाए, तो उसने एक बार बुलाया उनको, जब सन्यासी चेतन महाप्रभु उनको बुलाया तभी अनुराचार्य करके जाना है, जैसे वो अन्य सन्यासी अपने कुछ आश्रम से निकले तो उससे में बारिश आने लगा, अब वो चेतन महाप्रभु आए और अपनी सर्वे करते प्रसाद ले, तो चेतन महाप्रभु बनाने लगे कि तब तक दूसरे बार सन्यासी आए नहीं, मालूम पड़ा कि अभी सब तरीके जो खाली है
बहुत अच्छा। तो अद्वैत आचार्य क्या सन्यासी विरोधी थे? नहीं। फिर क्या कारण था कि बाकी सब लोग आएंगे तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, महाप्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा मैं? हाँ, तो इसलिए भगवान की योजना इस तरह से हो गई कि अद्वैत आचार्य अपने हृदय की इच्छा पूरी कर पाए और दिल से चैतन्य महाप्रभु की सेवा उन्होंने कर ली, प्रसाद सेवा। बहुत अच्छा। और हाँ,
महाप्रभु एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर प्रसाद ले जाते हैं अद्वैताचार्य सभी को लेके, तो अद्वैताचार्य उनको चंदन का लेप करते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु थाली को लेकर उनको भी लेप करते हैं और कुछ उनसे आवाज करने लग जाते हैं और एक मंत्र कहते हैं योगी सोफी मुक्त, जो भी हो आप पर मैं नमस्कार करता हूँ और उनका पूजा करते हैं।
तो योसी तोसी क्या है? योसी सोसी
जो भी हो आप हो मैं आपका नमस्कार करता हूँ।
यह सी यह असी सह असी योसी सोसी, तो आप जो हो सो हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, चंदन वगैरह करके स्वागत करता हूँ, आप जो भी हो जो हो तो हो आप हो, चंदन वगैरह लगाया। यो से सो से। अच्छा और कौन सी लीला? हाँ
लीला याद नहीं, थोड़ा सा वो शांतिपुर में अद्विताचार्य पाठशाला था शांतिपुर, वहाँ से सिखाते थे, बहुत सारे लोग आते थे।
हाँ टोल, टोल कहते हैं उसको।
तो ऐसा कुछ है, अभी भी वहाँ पर एक वृक्ष है जो उनकी कलम से अभी भी ऐसा
अद्विताचार्य का टोल अभी तक वहाँ पर है, वृक्ष है वहाँ पर जो उनके कलम से उत्पन्न हुआ है। अच्छा वेरी नाइस। और
जब जब महाप्रभु संन्यास ले और वृंदावन की तरफ जा रहे थे तो नौके में नित्यानंद प्रभु थे, फिर नदी को देखा तो फिर महाप्रभु ने सोचा कि अभी वृंदावन आ गया, लेकिन बाद में अद्वैताचार्य को वहाँ पे देखते हैं तो फिर महाप्रभु बहुत गुस्से होते हैं कि आपने मुझे मतलब ऐसे चीटिंग किया है, शांतिपुर में लेके गए थे
आप वृंदावन में
आप कैसे यहाँ पे आ गए तो फिर
बहुत अच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास कहाँ लिया था? काटवा में। तो जैसे ही संन्यास लिया तो वो चल पड़े थे वृंदावन की ओर, परंतु इतने भाव विभोर हो गए थे कि सब लोग बड़े मुश्किल से उनको नियंत्रित कर रोक के रखने का प्रयास कर रहे थे। फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है चलो मैं आपको वृंदावन ले जाता हूँ, चलते हैं। तो वो चल पड़े शांतिपुर की ओर, गंगा के तट पे जा रहे थे। गंगा को देखकर महाप्रभु जो अपने भाव में थे व्रज भाव में, उन्होंने सोचा ये यमुना है, क्या कर दिया कूद गए। फिर उनको निकाल, अरे कहाँ चलो हम चलते हैं। फिर नौके में गए, नदी पार कर लिया और फिर पहुंच गए। महाप्रभु अभी अपने भाव में थे वहाँ पर शांतिपुर में, अद्वैताचार्य अपने घर में राह देख रहे थे, सारी व्यवस्था कर ली थी प्रसाद आदि की सब। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे, अरे तुम वृंदावन कैसे पहुँचे? अद्वैताचार्य को पूछा, जहाँ आप हैं वहाँ वृंदावन। वहाँ प्रसाद खिलाया, फिर नित्यानंद प्रभु को कहा तुमने धोखा दिया मुझे, कहा कि वृंदावन ले जा रहा हूँ परंतु मुझे शांतिपुर ले आए। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या उत्तर दिया?
तो एक भाग जो आप कह रहे हैं वो यमुना से कनेक्टेड है, वो पार यमुना ही है, ये जो ये साइड है ये गंगा है, तो आप वृंदावन में ही।
देखिए संगम कहाँ है? गंगा यमुना का प्रयाग में। तो एक तरफ से यमुना आती है, एक तरफ से गंगा, दोनों नदियों का पानी मिल जाता है। तो उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु ने, मैंने झूठ नहीं कहा, आप जिस जिसमें जा रहे थे वो यमुना ही है, तो इसलिए मैंने आपको झूठ नहीं कहा कि हम यमुना में जा रहे हैं, आपको लेकर आए हम यहाँ पे। इस तरह से देवी षड्यंत्र नित्यानंद प्रभु ने भी रचा। पर वहाँ पे क्या हो गया, अद्वैत आचार्य के घर में सच्ची माता आई थी और सच्ची माता ने पहली बार महाप्रभु को इस रूप में देखा संन्यास लेने के बाद। और फिर महाप्रभु ने कहा, क्या कहा अपनी माँ से? पागलपन में मैंने संन्यास ले लिया, मुझे पता नहीं चला मैंने क्यों ले लिया, भाव में आके अब मैं पछता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने तो ले तो लिया, इसलिए आप आशीर्वाद दे दो, मैं क्या करूँ, तो अभी आप बताओ मैं क्या करूं कहां रहूं। तो सच्ची माता ने क्या कहा, नहीं नवद्वीप में रहने से देखो सन्यासी को अपने गांव में नहीं रहना चाहिए, लोग निंदा करते हैं, इसलिए मैं तो चाहती हूं कि तुम नवद्वीप में रहो, मैं तुम्हें दिन भर देख सकूंगी, लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और मेरे लिए वो असहनीय हो जाएगा, तो नवद्वीप में तो नहीं रह सकते, तुम तो वृंदावन जाना चाहते हो, लेकिन वृंदावन तो इतने दूर है, बहुत आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे करो जगन्नाथपुरी भी वृंदावन से अभिन्न है, ये गुप्त वृंदावन है, और नवद्वीप और जगन्नाथपुरी एक घर के दो कमरों के समान है। तो यहाँ से भक्त वहाँ जाते रहेंगे, वहाँ से भक्त यहाँ पर आएंगे, इसलिए जब यहाँ वहाँ होगा मैं देख लूँगी तुम्हें, इसलिए जगन्नाथपुरी में जाओ। तो फिर शिरोधारी कह के चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता शची माता का आदेश पालन किया और वो जगन्नाथपुरी में रहने के लिए चले गए। ये महाप्रभु के जगन्नाथपुरी जाने का बाह्य कारण है कि सची माता का आदेश था कि ये वृंदावन बहुत दूर हो जाता है, जगन्नाथपुरी निकट है नवद्वीप के, इसलिए वहाँ जाओ, ये कारण है। परंतु बाह्य कारण है, गुह्य कारण क्या है जगन्नाथपुरी चुनने का? हाँ, किस तरह से, कैसे?
कुरुक्षेत्र का भाव है, जहाँ पे गोपियाँ भगवान कृष्ण को पहले बार देखती हैं, तो तीव्र विरह का भाव वहाँ पे प्रकट करते हैं, तो वो भाव का आस्वादन करने के लिए उत्साह उपयुक्त है।
क्यों? तो जगन्नाथ का क्या संबंध उससे?
क्योंकि जगन्नाथ
जगन्नाथपुरी का क्या संबंध?
जगन्नाथ जी श्रीमती राधा रानी के विरह को वहाँ पे ये कर रहे
हैं, अनुभव
का विरह, जगन्नाथ जी का रूप ऐसे, जगन्नाथ जी भी वैसे विरह का,
हाँ जगन्नाथ जी ही विरह के रूप है। जगन्नाथ भगवान भी कृष्ण ही है ना, तो वो ये कृष्ण का रूप इस तरह से क्यों है? ये एक विरह का रूप है। भगवान कृष्ण जब द्वारका में निवास करते हैं और वृंदावन के निवासियों के विरह में रहते हैं, खास करके श्रीमती राधा रानी के और अन्य ब्रजवासियों के, तो उनका रूप ऐसे बन जाता है। और उसी तरह से बलभद्र और सुभद्रा, तो ये एक विरह का रूप है, इसलिए जगन्नाथपुरी ये भी विरह क्षेत्र कहलाता है। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इन तीनों का रूप ही विरह रूप है, विरह क्षेत्र है जगन्नाथपुरी। परंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे विरह क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो भी विरह के स्वरूप है, परंतु जिस तरह से जगन्नाथ है उस तरह से नहीं। जगन्नाथ कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी के विरह में है, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, परंतु श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार किया है और वो कृष्ण के विरह में है, इसलिए दोनों ही अपने अपने निजी विरह भाव में हैं और विरह क्षेत्र में दोनों आ गए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को चुन लिया, ये उनका आंतरिक या गुह्य कारण है जगन्नाथपुरी जाने के पीछे। परंतु बाह्य कारण क्या है? सची माता का आदेश था। इस तरह से अद्वैत आचार्य की लीलाएं बहुत सारी हैं, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, बहुत विस्तार में कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है। आज अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो उनके चरणों में हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि उसी वृंदावन के भाव को, उसी नवद्वीप के भाव को, संकीर्तन आंदोलन को हमारे हृदय में जागृत वो अपनी कृपा से करवाएं। ठीक है, हाँ
to exchange loving reciprocation between Shiva and Kubera. The Shiva wanted to become a son of Kubera. So that is how this Advaita Acharya is the extension of Shiva. So in the beginning we are discussing that Sarasya is the Vishnu Tattva. So how had it understood? Is that
no. सदाशिव जो सदाशिव वैकुंठ लोक में रहते हैं वो विष्णु तत्व हैं, और उनसे आते हैं अद्वैताचार्य, इसलिए अद्वैताचार्य भी विष्णु तत्व हैं, और वही जो वैकुंठ लोक के सदाशिव हैं उनसे भी शंभु आते हैं जो विरजा के इस तट पे हैं, जिनसे भी सारे शिव उत्पन्न होते हैं। शिव शंभु भी शिव है, लेकिन उस एक शंभु से फिर सारे एक ब्रह्मांड के शिव उत्पन्न होते हैं। और कभी कभी ये जो तत्व की बात होती है ना, ये अचिंत्य होती है। इनको समझना बहुत कठिन होता है कि कौन किस तत्व के हैं, कैसे समझ सकें। तो बस इसलिए प्रभुपाद जी जिस प्रकार से समझाते हैं उसी से हम समझें, और बस आगे चल के जब हम गोलोक वृंदावन जाएंगे तब ये चीज़ें और स्पष्टता से समझ में आएंगी। हाँ ठीक है।
वो शंभु जब यहाँ प्रकट होते हैं, जैसे हम देखते हैं भगवान विष्णु ही राम बन के आए या कृष्ण बन के आए, दशरथ से जन्म हुए, लाइक इज द वे ही केम लाइक एज राम। तो ऐसे जो थर्ड कैंडल में वर्णन आते हैं कि ब्रह्मा के यहाँ से रुद्र सब उत्पन्न होते हैं, तो वो शंभु इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं रुद्र बन के, क्या कहने से
वो ब्रह्मांड के भीतर कोई एक निमित्त चाहिए ना, कोई निमित्त चाहिए। जैसे भगवान भी एक निमित्त चाहते हो, यशोदा माता नंद बाबा को या देवकी वसुदेव को एक निमित्त बना के प्रकट होते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के दृष्टि से देखा जाए जो शिव जी के पिता हैं उनसे वरिष्ठ हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति के दृष्टि से शिव जी श्रेष्ठ हैं। एक निमित्त, हाँ वही शंभु तत्व वही है, रुद्र। रुद्र के भी कई रूप हैं, 11 रूप बताए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को समझना बहुत कठिन है। तो जैसे बताया बस उतना ही हमें स्वीकार करना है। इससे अधिक और गहराई में इनको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो वही शिव तत्व प्रकट हुए हैं रुद्र स्वरूप में। और हाँ चैतन्य महाप्रभु मूल कृष्ण है वृंदावन के, यहाँ पे आए हैं। हाँ
सेम टाइम ऊपर क्या होगा।
अच्छा मतलब गोलोक खाली हो जाता है कि तो प्रश्न ये है कि वहाँ गोलोक में कृष्ण है, अब वही कृष्ण यहाँ पे आ गए, तो जब यहाँ पे आए तो वहाँ कैसे है, यही प्रश्न है ना। तो इसका कोई उत्तर देंगे? अच्छा ये देखो, ये प्रभाव विलास की बात कर ली, मूल कौन से हैं? स्वयं रूप के और कौन से दो विभाजन, स्वयं प्रकाश और वैभव प्रकाश। तो अभी स्वयं प्रकाश में कौन से विभाजन याद है? ऐसे भगवान के जो अवतार हैं, जब भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं और वो जो विस्तार हैं मूल जो रूप हैं उनसे रूप में आकृति में भाव में इत्यादि बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, तो वो भी विस्तार जैसे रासलीला में है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार किया और प्रत्येक रूप बिल्कुल एक जैसे थे। तो ऐसा नहीं कि एक जगह से जब यहाँ कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया तो इतने सारे कृष्ण हो गए, एक साथ सारे कृष्ण हो गए। ऐसा नहीं कि एक बार कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया तो वो रह गए और बाकी उत्पन्न हो गए, मूल कृष्ण रहे वहीं पर। तो ठीक उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण वहाँ पर अपने आप को विस्तार करते हैं तो वो वही के वही रह जाते हैं, परंतु उनके विस्तार जो हैं वो प्रकट होते हैं और उनके विस्तारों के भी विस्तार होते हैं। इसलिए ऐसे कभी नहीं होता कि भगवान ने अपने आप को विस्तार किया और मूल रूप ही नहीं रहा, ऐसे नहीं होता। हाँ, मूल रूप भी आ गए और मूल रूप वहाँ भी है। तो भगवान में से कितने भी कुछ उत्पन्न हो वो रह जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव पूर्णमेव अवशिष्यते, है ना। तो भगवान कृष्ण पूर्ण है, तो उनसे और एक पूर्ण उत्पन्न हुआ, फिर भी वो पूर्ण ही रहे। तो मूल कृष्ण आए यहाँ पर, लेकिन वहां पर भी मूल कृष्ण रह गए। ऐसा नहीं कि मूल कृष्ण से मूल कृष्ण आए इसलिए वहां कुछ नहीं रहा, ऐसे नहीं। ये गोलोक की ये है गणित, गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत की गणित। हाँ, अद्वैत आचार्य ठीक है, लेकिन गोलोक से आए, परंतु देखो ये सारे जितने भी भगवान के रूप है ना, ये सब एक ही है, एक ही व्यक्ति है। एक क्षीरोदकशायी विष्णु और गोलोक में रहने वाले गोविंद एक ही हैं, वो केवल रूप थोड़ा अलग कर लिया अपना, थोड़ा भाव अलग कर लिया, बस वैसे हैं एक ही। इसलिए वो ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार प्रकट होते हैं ना आध्यात्मिक जगत से, वो क्षीरोदकशायी विष्णु के माध्यम से आते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई लोग कहते हैं कि कृष्ण से विष्णु से कृष्ण आते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो इस दृष्टि से सही है। क्योंकि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हम क्या कहते हैं कि विष्णु रूप कृष्ण से आते हैं, कृष्ण मूल है। और अन्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो क्या कहते हैं, विष्णु से कृष्ण आते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब वही वैकुंठ के रूप भौतिक जगत में आते हैं तो उनके माध्यम से आते हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु के माध्यम से। इसलिए इस ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से कृष्ण हो या बलराम हो, राम हो, नरसिंह हो, वो सब क्षीरोदकशायी विष्णु से उत्पन्न हुए हैं यहाँ के दृष्टिकोण से। हाँ ठीक है, ऐसे है। हाँ
प्रश्न तो कि बाकी सभी जो द्वापर युग होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, और फिर बाकी सभी जो द्वापर युग होते हैं उनमें भी कृष्ण के अवतार आते हैं, तो वो स्वयं भगवान कृष्ण नहीं होते हैं क्या?
नहीं होते हैं। तो प्रश्न ये है कि प्रत्येक द्वापर युग में तो कृष्ण आते हैं, लेकिन प्रत्येक द्वापर युग में वो वृंदावन के कृष्ण नहीं होते हैं, नहीं होते। कोई बता सकते हैं कौन से द्वापर युग में स्वयं कृष्ण आते हैं गोलोक वृंदावन से? पूरा बताइए, गणित बताओ। हाँ, कौन से मनवंतर, मतलब मनवंतर दिन में ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में सातवें मन्वंतर में 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। तो अन्य द्वापर युगों में कृष्ण आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, परंतु उनके अंश आते हैं, उनके अवतार, अन्य अवतार आते हैं।
तो वो व्रज भक्ति का प्रचार
नहीं करते, वो वैकुंठ, इसलिए तो ये श्रेष्ठ बात है। और जब द्वापर युग की बात हो गई तो कलयुग की बात भी चैतन्य महाप्रभु, तो क्या वो प्रत्येक कलयुग में आते हैं? भगवान कौन से रूप में आते हैं? पीत रंग, पीले रंग के अवतार में आते हैं। प्रत्येक कलयुग में ये अवतार लेते हैं, परंतु जिस द्वापर युग में भगवान कृष्ण वृंदावन के प्रकट होते हैं, उसी द्वापर युग के बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो क्या अन्य कलयुगों में पीले रंग के अवतार नहीं आते? आते, परंतु वो चैतन्य महाप्रभु नहीं होते हैं, वो वैकुंठ के रूप होते हैं। तो क्या वो वृंदावन का भाव नहीं स्वीकार करते या प्रचार करते? नहीं। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का समय और अवतार इतना विशेष है। वृंदावन के श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों के बीच में अंतर केवल लगभग 4,500 वर्षों का, और हम चैतन्य महाप्रभु से केवल 500 साल बाद में आए। कितने भाग्यशाली। ब्रह्मा जी के एक दिवस की अवधि कितनी होती है? 43 लाख साल। उसमें से केवल 5,000 वर्ष या 500 वर्ष का अंतर कितना होता है? तो हम कितने भाग्यशाली हैं।
महाराज जी, ऐसा भी सुनते हैं कि जो बाकी द्वापर युग में जो कृष्ण आते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं, ऐसे ही है क्या?
विष्णु के अवतार मतलब विष्णु रूप होते हैं।
हाँ, विष्णु के विस्तार।
स्वयं कृष्ण जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते, जैसे अभी हमने बताया, बाकी सब वैकुंठ रूप होते हैं।
उसका मतलब उस समय जो वृंदावन लीला नहीं होता?
नहीं होते। वृंदावन लीला ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार हर एक ब्रह्मांड में, परंतु हर एक ब्रह्मांड में हो रहा है। तो यहाँ कृष्ण भगवान वृंदावन लीला करते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। जैसे ही एक लीला यहाँ समाप्त होती है, पूतना वध, तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में पूतना वध हो जाता है, वो करते हैं। उस ब्रह्मांड में पूतना वध करके तुरंत तीसरे ब्रह्मांड में जाके पूतना का वध करते हैं। उधर पूतना का वध करने के बाद यहाँ त्रिणावर्त का वध करते हैं पहले ब्रह्मांड में। ये समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में त्रिणावर्त का वध करते हैं, फिर तीसरे ब्रह्मांड। इस तरह से लीलाएं चलती रहती, लेकिन हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार।
गौड़ीय वैष्णव के अलावा जो भी बाकी संप्रदाय हैं उनके ऐसे समझ है कि कृष्ण भगवान, जैसे आपने पहले बताया, मूलतः वो विष्णु से आते हैं, तो इसी बात के कारण है क्या कि वो बाकी द्वापर युग क्योंकि व्रज भक्ति उनमें प्रचलित नहीं है,
वो वैकुंठ के रूप ही आते हैं। और जो भी हो, वैकुंठ से भी आते हों, फिर भी क्योंकि क्षुरदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं, इसलिए उनको विष्णु से प्रकट होने वाले रूप कहते हैं। वैकुंठ लीला करते हैं, वैकुंठ लीला नहीं। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के रूप में नहीं आते हैं, भगवान कृष्ण अपने भिन्न अन्य रूपों में आते हैं, जैसे राम हो, जैसे नरसिंह हो, वामन हो, अलग 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 रूप होते हैं ना भगवान के। वैसे वैकुंठ जनार्दन और इतने सारे रूप हैं, कृष्णी गर्भ जो ध्रुव के सामने प्रकट हुए थे
उस द्वापर में, कृष्ण नामक ये मंदिर।
हाँ, तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने वाले कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन के नहीं आते अन्य द्वापर युगों में, विष्णु स्वरूप आते हैं। कोई अवतार होते हैं सांवले रंग के, परंतु वो बांसुरी बजाने वाले वृंदावन के कृष्ण नहीं होते हैं अन्य द्वापर युगों में, वो वैकुंठ का भाव लेकर आते हैं। तो वैकुंठ लीला होती है। भागवतम में जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, दसवें स्कंद को छोड़कर, तो जैसे ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, भीष्म देव हैं, ये सारे के सारे वैकुंठ भक्त हैं। देखो वैकुंठ और गोलोक में अंतर क्या है? केवल भाव का अंतर है, रस का अंतर है। वैसे दोनों ही आध्यात्मिक जगत है, दोनों ही शुद्ध प्रेम के स्थान हैं, जहां भगवान और उनके शुद्ध भक्त रहते हैं, लीला करते हैं। परंतु वृंदावन में माधुरी की प्रधानता है, वैकुंठ में ऐश्वर्य की प्रधानता है, ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है, महात्म्य ज्ञान प्रधान है कि विष्णु ये भगवान है और मैं उनका दास हूँ। भक्तों में ये एक भावना रहती है कि ये मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं। और यद्यपि एक निकटता रहती है, एक मिठास भी रहती है, फिर भी वो एक थोड़ा सा अंतर भी रहता है कि ये मेरे प्रभु, मैं ये मेरे स्वामी, मैं इनका दास। इसलिए इतनी निकटता से बर्ताव नहीं कर सकते हैं भगवान के साथ जितना कि वृंदावन में करते हैं। वृंदावन में ग्वाल बाल, गोपियाँ, माता यशोदा जिस प्रकार से श्री कृष्ण से बर्ताव करती हैं, जितनी निकटता से, जितनी स्वतंत्रता से, जिस भाव से, इतनी मिठास से, वो अन्य जो वैकुंठ लोक होते हैं उनमें नहीं पाया जाता। फर्क इतना ही है।
उस टाइम कृष्ण कथा होती है
ना? कृष्ण कथा सब जगह होती है, वैकुंठ लोकों में भी होती है, परंतु कृष्ण मतलब कौन, ये हमें समझना चाहिए ना। कृष्ण विष्णु रूप में है, कृष्ण नारायण रूप में है, कृष्ण राम स्वरूप में है, कृष्ण नरसिंह रूप में है, ये सब कृष्ण ही है। तो हम जब कहते हैं कि कृष्ण कथा मतलब क्या है? मतलब केवल वृंदावन कथा? कृष्ण कथा मतलब भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उन सब की कथाएं जब होती हैं और कृष्ण के भक्तों की कथा होती है वो भी कृष्ण कथा है। उनमें से विशेष कृष्ण कथा है वृंदावन की कथा, जो माधुर्य प्रधान है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये श्लोक में क्या परिभाषा है, किस चीज की परिभाषा है? उत्तम भक्ति। तो उत्तम भक्ति में किन की उपासना करनी चाहिए? आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। तो श्रील जीव गोस्वामी बात बताते हैं, क्या बताते हैं इस संदर्भ में? कृष्ण शब्द क्योंकि भगवान कृष्ण में उनके सारे विस्तार सम्मिलित होते हैं, जितने भी विस्तार और अवतार भगवान के हैं वो सब श्री कृष्ण में समाये हुए रहते हैं। तो जब श्री कृष्ण वृंदावन प्रकट होते हैं उस समय भी इतने राम नरसिंह मत्स्य सब उनके शरीर में हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न। परंतु वो रहते हैं, जब कृष्ण असुरों का वध करते हैं तब उनका विष्णु स्वरूप उसमें वध करता है, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण केवल बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, गायों को चराते हैं, नंद बाबा माता यशोदा को आनंद देते हैं। आप नंद बाबा माता यशोदा गोपियों को, ग्वाल बालों को अन्य वैकुंठ लोकों में नहीं पाएंगे। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब शुद्ध भक्ति की परिभाषा श्री कृष्ण के संबंध में की जाती है तो हमें जानना चाहिए कि कृष्ण के अंतर्गत, शब्द के अंतर्गत राम नरसिंह विष्णु नारायण संकर्षण प्रद्युम्न सारे के सारे भगवान के विस्तार आ जाते हैं। अन्यथा यदि ऐसे हम स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो कोई कहेंगे फिर राम भक्ति ये आप कृष्ण भक्ति नहीं हो, शुद्ध भक्ति नहीं होगी। वो तो है, कोई शुद्ध राम भक्त हो जाता है वो भी, उसे भी हम भक्ति मानते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति जब कृष्ण कथा कहते हैं उसी तरह से राम कथा, नरसिंह कथा, मत्स्य कथा सब आ जाते हैं इसमें। जब हम कृष्ण कथा कहते हैं ये केवल उस वृंदावन लीला तक सीमित नहीं है, यद्यपि वृंदावन की लीलाएं श्री कृष्ण की सर्वोच्च और सबसे मधुर लीलाएं हैं, फिर भी अन्य रूपों में जब भगवान लीलाएं करते हैं वो भी कृष्ण कथा कहलाते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ ना इस बात तक? भगवान कौन सी लीला करेंगे? वैकुंठ लीला करेंगे, उस भाव में लीला करेंगे। हाँ ठीक है ना। अच्छा हाँ प्रसाद समय, लेकिन ये भक्त हमारे इतने उत्साही है उनका पेट कृष्णकथा से भरा है इसलिए किसी को याद नहीं। परंतु भगवान के किस रूप की सेवा किस समय करनी चाहिए चलो प्रसाद लेते हैं।
थोड़ी सी सूचनाएं हैं।